नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ कड़ियों से हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में हमने स्पेशली ये देखा था कि किस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारी मेमोरी किस तरह से बढ़ती है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। आज हम इसी चर्चा को आगे लेके जाएंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
मेमोरी की बात हमारी चल रही थी और हमने देखा कि मेमोरी कम होने की वजह से कैसे हम बार बार हम अपने आप को कहते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूँ, चीजें कहीं छोड़ देते हैं और ज्यादातर उसी की वजह से छोटे छोटे डिबेट होते हैं, बातें बढ़ती। आपने एक बहुत अच्छा हमको उदाहरण भी दिया था कैसे एक मदर ने गुस्से में आकर वो कर दिया था बेटे के साथ में। ये सब बातें होती है। आज हम इसी बात को आगे लेके जाएंगे कि बच्चों के लिए पेरेंट्स की वरी बहुत रहती है कि बच्चों के अंदर मेमोरी का प्रॉब्लम है या वो याद नहीं रखते हैं, उसकी वजह से उनके कैरियर पर बहुत इफेक्ट आता है। तो उसके बारे में आप कैसे उसको कोरिलेट करेंगे? मेडिटेशन बच्चे सीख सकते हैं क्या?
डेफिनेटली बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत बचपन से ही उनको आदत डालनी चाहिए। हमने पहले भी देखा कि बच्चे कॉपी करते हैं कि पेरेंट्स को टीवी देखते हैं, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, हर सेकंड में वो चैनल चेंज करते हैं, तो पेरेंट्स में खुद एकाग्रता नहीं है या उनकी कुछ ऐसी आदत है तो बच्चे भी उनको कॉपी करते हैं। तो पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में हम कोई आदतें डाले तो हम पहले उनके लिए रोल मॉडल बने। तो बच्चे कॉपी करते हैं, तो पेरेंट्स अगर रोज पेरेंट्स का बैठने का टाइम हो, मेडिटेशन का फिक्स हो, खुद मेडिटेशन करे तो बच्चों में भी रुचि आती है और बच्चों को रिवार्डिंग बिहेवियर माना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे किसी काम के लिए, तो बच्चे मेडिटेशन सीख सकते हैं। लेकिन जो चिंता की बात आपने कही कि कुछ बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं रहते हैं या उनको चीजें ध्यान में नहीं रहती है, तो जैसे कि हम हमेशा कहते आए हैं कि अगर ऐसा मेजर इश्यू है जिसमें कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है तो एक बार एक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि मेमोरी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है ना, या उसका अटेंशन कम हो सकता है
जी।
तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक बीमारी है जिसको हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, माना बहुत हाइपर एक्टिव है, एक स्थान पर बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं वो तो नहीं है, हाइपर एक्टिव तो नहीं है मेरा बच्चा, तो वो रूल आउट करना चाहिए। आप उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ तो वो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर मेमोरी अफेक्टेड है, आपको लगता है कि ब्रेन में कुछ इश्यू है, जैसे कुछ बच्चों का आईक्यू कम हो सकता है लेकिन वो शुरुआत में पता नहीं चलता है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास लेके जाए जो इसके स्पेशलिस्ट है, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियन है, उनका ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। और जब हम ये कॉजेस को रूल आउट करते हैं कि नहीं उसका ब्रेन अच्छा है, आईक्यू अच्छा है या उसको ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या जैसे हाइपर एक्टिविटी बताया, या और एक बीमारी है जैसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हम कहते हैं कि अटेंशन ही नहीं रख पाते ज्यादा समय तक, तो वो रूल आउट करो और उसके लिए जो दवाई है वो चालू करना चाहिए। ये सब इश्यू नहीं है, माना जब वो पढ़ाई करता है तो अच्छे मार्क्स ले लेता है, एवरेज मार्क्स से पास हो जाता है, और अगर वो ध्यान दे तो और अच्छे मार्क्स ले लेता है, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप उसका पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना
जी।
तो मेडिटेशन डेफिनेटली मदद करता है इसमें। हमने देखा है कि जो बच्चे बचपन से ध्यान का अभ्यास करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, हमने देखा दे आर वेरी गुड इन स्टडी। ब्रेन में हमारे ऐसे सेंटर्स है जिसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। इसके ऊपर बहुत स्टडी हुई है, बच्चों में भी हुई है और एडल्ट में भी हुई है। खास करके स्टडी हुई है, मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे काफी दर्शक हैं जो एडल्ट है, तो पहले माना जाता था कि जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो वो कहावत है ना, साठी और बुद्धि नाठी, माना
जैसे आप 60 तक पहुंच जाते धीरे धीरे आपका ब्रेन उतना काम नहीं करता जितना पहले, करता था।
तो ऐसे हम पहले मानते थे कि वो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, ब्रेन की पेशियां है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो डीजनरेट होते जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी पुरानी होती है ना, तो पुरानी होती है तो आवाज करने लगती है, वैसे ये ब्रेन के सेल्स खत्म होने लगते हैं उनका मास। लेकिन आज अभी नया स्टडी आया है और वो बताते हैं साइंटिस्ट कि एक नया कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे स्टडी हुई है। मुझे एक स्टडी याद आती है 2011 में, सारा करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया था कि 8 हफ्ते का स्टडी उन्होंने किया था, माना नियरली 2 महीने का अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है उसका थिकनेस बढ़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन खत्म होने के बजाय उसका साइज बढ़ सकता है अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन करें तो। और भी स्टडी है जिससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन डीजनरेट नहीं होता है, अगर हुआ है तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। माना जो मेडिटेशन नहीं करते और करते हैं, इन दोनों को तुलना किया गया तो मेडिटेशन करने वालों में अगर डिजेनरेशन हो भी रहा है, माना उम्र के हिसाब से उनकी संख्या कम भी हो रही है, तो उसका स्पीड जो ध्यान नहीं करते उससे कई गुना अच्छा है।
डिजेनरेट होने
तक कम है, माना हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे 60 साल में आप भूलना चालू करते हैं तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो 70 या 75 में आप भूलना चालू करेंगे। मुझे आश्चर्य लगता है हमारी दादियां ब्रह्मा कुमारी में, अभी दादी जानकी 100 साल की है, तो 100 साल की उम्र में उनको 80 साल पहले वाली बातें याद है और बहुत अच्छी तरह से याद है, वो अनुभव सुनाते हैं। तो हमने ऐसे देखा है प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। और ये तो फंक्शनल एमआरआई, माना ये हमको कैसे पता चला कि जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन होता है वैसे एमआरआई भी होता है। और एमआरआई माना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ब्रेन को वो मशीन में लेके जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें फंक्शनल एमआरआई होता है जिसमें हर एक एरिया का थिकनेस हम देख सकते हैं। तो ये स्टडीज हुई है फंक्शनल एमआरआई से और उसमें ये पता चला कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो पहला तो थिकनेस बढ़ता है, ग्रे मैटर की साइज बढ़ते है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात हमको पता ये चली है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जो मन के भटकने से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको मी एरिया बोलते हैं, मी एरिया। उसका जो साइज है जितना बड़ा होगा वो हाइपर एक्टिव है, तो मेडिटेशन से वो साइज कम होने लगता है, माना आपका मन का भटकना भी कम होने लगता है।
अच्छा, वो साइज कम होता है तो मन जो हमारा मन बार बार भागता है वो कम होगा,
कम होता है,
और वो साइज मेडिटेशन से कम होता है।
ये दिखाया है स्टडीज में, दिखाया है। ये दूसरा बेनिफिट माना हम ब्रेन के साथ देख रहे हैं। और तीसरा, ब्रेन के अंदर एक और हिस्सा होता है जिसको हम इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ, खास करके डर और क्रोध, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जिसका नाम है एमिगडाला।
जी,
ये टेक्निकल नाम है फिर से। तो ये हिस्सा हमको इमरजेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कोई सांप आया तो इमरजेंसी आए तो मेरे को अपने आप को वहां से भगाना है, क्योंकि अगर मेरे से गलती हो गई वो काटेगा और पॉइजन फैलेगा, या सडनली गाड़ी आ गई है ना, एक्सीडेंट होने वाला है, तो मुझे फास्ट, तो ये शॉर्टकट करके हमारे ब्रेन में होता है कि आपको क्विक डिसीजन ले। और एक होता है सोच समझ के आराम से डिसीजन ले, दो रास्ते हमारे ब्रेन के अंदर है। ये जो एरिया है एमिगडाला, ये इमरजेंसी में इस्तेमाल किया हुआ, ये हमारे भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और ये देखा गया है कि अगर आपके अंदर भावनाओं का नियंत्रण नहीं है, आप बहुत इमोशनल है, गुस्सा है, डर है, अगर ये एग्जैजरेटेड माना कंट्रोल से बाहर है, देखो भावनाएं गलत नहीं है, भावनाएं एक सिग्नल हमको देते, जैसे डर निगेटिव नहीं, डर आपको बचा भी सकता है, लेकिन डर अगर अनरियलिस्टिक है
जी,
बिना किसी वजह के आप डर रहे हैं तो वो बीमारी बन जाती है, जिसको चिंता की बीमारी कहते हैं या एंग्जाइटी बोलते हैं। तो देखा गया है कि इसको कंट्रोल करने वाला एक और हिस्सा होता है आगे का ब्रेन का हिस्सा, जिसको हम पीएफसी कहते हैं, माना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो नॉर्मली क्या होता है, एक अच्छे व्यक्ति में, एक बैलेंस व्यक्ति में वो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रहता है। तो हमने देखा मेडिटेशन से ये जो संतुलन है हमारे अंदर आ जाता है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा, भावना और विवेक का संतुलन होना चाहिए
जी।
तो वो संतुलन या ओवर राइडिंग इमोशंस है, बहुत मेरे इमोशंस या भावनाएं मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो उसको शांत करने वाला एरिया है, वो पावरफुल बनता है मेडिटेटर्स में।
ओके। मतलब बहुत सारे फायदे हैं,
बहुत सारे फायदे हैं जिसके वजह से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, अटेंशन बढ़ता है और ब्रेन का हिस्सा जो डिजेनरेट होने वाला वो कम हो जाता है और उसकी थिकनेस बढ़ती है। तो ये सब फायदे आपको मेमोरी में मदद करते हैं। तो इसलिए माँ बाप अगर ध्यान में रखे कि बचपन से ही आप 5 साल की उम्र से 4 साल के जैसे बच्चों को समझ में आता है, उनको एक स्थान पर बिठा के उनके साथ बैठ के अगर आप ध्यान करना चालू करते हो तो बच्चों को वो आदत लग जाती है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि उनके साथ बैठकर अगर हम करते हैं तो आदत लगती है।
जी।
और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात ये जो आपने बताई कि किस तरह से ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो।
यस, डेफिनेटली।
इसमें मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने डीप मेमोरी की बात की थी, डीप मेमोरी के अंदर क्या ऐसा है कि जो हम सुपरफिशियल मेमोरी में नहीं रखते हुए उसको डीप मेमोरी में भेजते हैं, पहला। और सेकंड, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके आंसर हमें मिल नहीं रहे हैं, तो क्या वहां उस मेमोरी में कुछ ऐसा है कि जिससे हम निकाल सकते हैं?
यस, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सूक्ष्म है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, जितना वो इमोशनली चार्ज होगी, माना जिसमें हम बहुत इमोशनल होते हैं, या तो बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं, बहुत गुस्से वाले, या हमारे जीवन को बदल देने वाली होती, जैसे आप एक एरिया में रहे, आपका ट्रांसफर हो गया या डाइवोर्स हो गया या किसी की मौत हो गई,
ये सब दिन।
हाँ, शादी वाले दिन, वो भी एक प्रकार की मौत ही है, आपका फ्रीडम खत्म हो जाता है,
बहुत बड़ी घटना है वो लाइफ में किसी के।
हाँ, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इमोशंसली चार्ज जितने भी इवेंट्स है या घटना है, ये डीप में जाते हैं हमारे और हम उसको अच्छी तरह से याद रखते हैं। क्या होता है कि बचपन में कोई ऐसी घटना घटी है, अभी वो डेप में चली गई है, पर उसका इफेक्ट मेरे बॉडी पे आज भी है। मुझे एक केस याद आती है कि एक बहन को लेदर का चप्पल का एलर्जी था।
ओके।
लेदर किसी भी जगह पे टच हो गया तो बॉडी में रैश आते थे। ठीक है, तो उसका बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, एलर्जी की जो दवाई होती है एंटी हिस्टामिनिक, वो गोली देते हैं या स्टीरॉयड देते हैं, उससे वो कम हो जाता है, लेकिन वो नहीं जाता था। तो आखिर में किसी ने सलाह दिया कि आप देखो, हो सकता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ रहा हो, तो उसको जब सब कुछ करके नहीं होता है ना, तो हम एलोपैथी वाले उसको साइकियाट्रिस्ट के पास हमने भेजा। वो लकीली डॉक्टर हिप्नोटिज्म जानता था, सम्मोहन, तो उसने उसको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डर है क्या वो देखने की कोशिश की। तो पता चला कि जब वो छोटी थी, 4 साल की थी, तब उसके हाथ से एक घर में जो फ्लास्क था कांच का, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पीस था, वो फूट गया था और उनके पिताजी ने उनको लेदर चप्पल से मारा था, तो लेदर का डर वो अंदर बैठ गया था।
उनको तो पता नहीं है, वो घटना याद नहीं,
याद भी नहीं, कम उम्र में हुई है, तो मारा था, तो वो अंदर डर था कि लेदर माना मार, मार माना डर, डरना चाहिए लेदर से। तो उन्होंने वो डर निकाल दिया और वहां पे अच्छे विचारों का रोपण किया, उनको बोला कि ये घटना हो चुकी है, उस समय पिताजी ने गुस्से में आके आपके साथ किया, लेकिन अभी वैसा नहीं है, वो लेदर उस समय इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और आप लेदर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। उससे
इतना कनेक्ट किया, सब
कनेक्ट किया,
घटना सारी कनेक्ट की,
कनेक्ट किया, वो निकाला, उसके जगह पे पॉजिटिव थॉट्स दिए। ऐसे कुछ सेशन, एक सेशन में पूरा नहीं निकलता है, कुछ सेशन ऐसे हुए और उसके बाद देखा उसकी एलर्जी चली गई।
सो बेसिकली डीप मेमोरी मतलब कि हम ऐसी घटनाओं को अंदर रखते हैं, चाहे वो हमारे फ्रंट पर अभी याद हो या नहीं हो।
Yes.
इसके बारे में अभी बहुत लोग हिप्नोथेरेपी कहते हैं, हिप्नोटिज्म जो शब्द अभी आपने यूज किया, तो इट इज अ साइंस।
अभी मेडिकल साइंस में इसको इस्तेमाल करना चालू किया है, और पहले इसके आजू बाजू में ना थोड़ा एक ग्रे एरिया था, लोगों को ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं ये हमारे माइंड को कंट्रोल न कर दे, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अगर आप नहीं चाहो तो आपको कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है।
आपकी इच्छा के विरुद्ध
आपके
नहीं जा
इच्छा के
सकते
विरुद्ध नहीं जा सकता है, और इसको लीगली आप कंसेंट लिए बगैर भी नहीं कर सकते। कंसेंट लेना है, मैं अपनी इच्छा से जाना चाहता हूँ। और कई ऐसे डॉक्टर है विदेशों में, मुझे याद आता है एक डॉक्टर की पुनर्जन्म को नहीं मानता था, विदेश के डॉक्टर है, और उन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर।
जी मैंने पढ़ी है ये किताब, बहुत इंटरेस्टिंग है।
और ओनली लव इज रियल, वो पेशेंट को रिग्रेस करते थे, इसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन माना बचपन में लेके जाना। तो कई ऐसे लोग जन्म के पहले भी हिस्से में वो चले गए, इसको एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते पास लाइफ थेरेपी, पीएलटी। माना पिछले जन्म में कई ऐसी घटनाएं रहते जिसका इस जन्म के साथ कनेक्शन होता है। वैसे भारत में तो कहावत ही है कि पिछले जन्म का मेरा कोई आया है घर पे जो मुझे परेशान कर रहा है,
लोग कहते हैं
क्योंकि पुनर्जन्म
मानते नहीं है या
विदेशों में नहीं था। तो विदेशों में जब से ये किताब लिखी गई तो लोगों ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, रिबर्थ के ऊपर रिसर्च हुआ है, और अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस है। और ऐसे नहीं कि वो इमोशनल है या भावना से लिखे हुए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से टीम जाके रिसर्च करके आई है। ये पता चला है कि देर इज ए एनर्जी विच सर्वाइव द डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी, माने ये शरीर चला जाता है लेकिन वो ऊर्जा रहती है, जिसको आप एनर्जी कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो। तो उस डॉक्टर ने जो केसेस लिखे है उसमें, उसने कहा कि जब मैं उनके पिछले जन्म की जो भी बातें हैं उसमें जो ट्रॉमा उनको हुआ है वो निकाल देता था तो बीमारी ठीक हो जाती थी। और उसका भी विश्वास नहीं, वो कहता है मैं नहीं मानने वाला, लेकिन अब मैं उसको मानने लगा हूँ। तो विदेश के डॉक्टर भी जो तर्क से चलने वाले, रैशनल है, एलोपैथी मेडिसिन वाले, ही वॉज साइकियाट्रिस्ट, तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट वाले ने ये किताब लिखी है। और ये एक अच्छी थेरेपी है, अगर कोई एक्सपर्ट है जो जानता है अच्छी तरह से, तो उसका कंसेंट लेके पेशेंट का हम जो हमारे अंदर जो भी सारे ट्रामाज हुए हैं, समझो मानो किसी को पिछले जन्म में एक्सीडेंट हुआ है और कमर पे गाड़ी ने ठोका है, तो इस जन्म में भी उसको कमर पे दर्द हो सकता है, तो पिछले जन्म का ट्रामा निकालना पड़ता है। तो देयर आर एक्सपर्ट्स जो ऐसे निकालते हैं और फिर उससे ये दर्द ठीक हो जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस है।
सिंपल हम उसको बताएं कि जैसे आपने मेमोरी का ही कहा कि उस ऊर्जा के बारे में आप बहुत बार ये मेंशन कर चुके हैं, और आपने बहुत बारी ये हमको बताया है कि राजयोग में किस तरह से हम ये मेमोरी को ऊपर लेके आ सकते हैं, और परमात्मा हमको किस तरह से ये सिखाता है कि हम कौन थे पहले। तो ये बात पुनर्जन्म की हम कहें, क्योंकि विदेशों के अंदर उनके रिलीजन में, वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उनके अंदर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, लेकिन वहां से ये बताया जा रहा है, वहां पे रिसर्च हो रहे हैं। तो राजयोगा में भी, ब्रह्मा कुमारीज में भी ये कॉन्सेप्ट है।
यस, अभी आप देखो इसके ऊपर काफी अच्छे संशोधन हुए हैं। एक 3 या 4 साल की कन्या है, कुमारी है, पूरा गीता कंठस्थ है। आप सोचो 4 साल में संस्कृत सीखना और वो 700 श्लोक चैप्टर वाइज याद रखना, अच्छी तरह से बोलना, ये संभव नहीं है। तो शी हैज कैरीड इट, माना वो पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा किया हो, स्टडी किया हो, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। एक अभी आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं कौटिल्य करके कुमार है, उसको इतने सारे देशों के बारे में जानकारी है और उनके कैपिटल्स के बारे में जानकारी है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, माना ये हम रेयरली देखते हैं ऐसे। हम बिल्कुल रैशनली तर्क से जाए तो भी वो 1-2 साल में इतना सब सीखना कठिन है, लोक संख्या और जाना, इट इज वेरी टफ। स्पिरिचुअलिटी के अनुसार पिछले जन्म के संस्कार है तो वो लेके आया है जानकारी। मोस्ट ऑफ द लोगों में पिछले जन्म का मर्ज हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों में ये याद रहता है और उनके ऊपर स्टडी हुआ है। तब से हमको ये पता चला कि शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसी ऊर्जा है जो शरीर छोड़ने के बाद रहती है, और उसमें इम्प्रेशंस होते हैं, वो याद करते हैं। तब पता चला कि ऐसे केसेस है, ऐसे 300 से ऊपर केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं।
ठीक है, मुझे एक क्विक क्वेश्चन आपका मतलब पूछना है आपके लिए, कि आप जो बात कर रहे थे हम कैरी करते हैं, और जैसे आपने कौटिल्य का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से उसने वो कैरी करके लेके आया तब जाके उसको इतना याद है, लेकिन हमारे फिलोसॉफी में, हिंदुइज्म के स्पेशली शास्त्रों के अंदर ये लिखा गया है अलग अलग प्राणियों में से जाके आते हैं, तो फिर क्या वो मेमोरी हम मतलब शायद जिन लोगों को याद आ रही है, इधर वो मनुष्य में ही होंगे।
हिंदुइज्म फिलॉसफी में बताया गया है कि अगर आपने कोई पाप कर्म किया है तो आप लोअर योनि में जाएंगे, जनावरों के योनि में, यानी आप प्राणी बन जाएंगे। लेकिन इसका दो आंसर हम दे सकते हैं। इंसान इतना दुख भोग रहा है जितना प्राणी नहीं भोग रहे। एक एग्जांपल है कि जो कार गाड़ी खींचने वाला, जो घोड़ा गाड़ी खींचता है, वो इंसान भी खींच रहा है। तो आपको अगर सजा भुगतनी है तो आपको लोअर योनि में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस योनि में भी बहुत सजा भुगत सकते हैं। जन्म से ही आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या ऐसी बीमारी है हार्ट की, या हार्ट बाहर आया है, ये सजा है कर्मों की। तो आपको उसके लिए दूसरे योनि में जाने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी ये पुनर्जन्म की घटनाएं हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो उसमें आज तक एक ने भी नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या गधा था या जानवर था। सभी ने बताया हम इंसान ही थे।
ओके, जितने रिसर्च हुए।
यस, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है कि जैसा बीज वैसा फल। माना आम के बीज को आम का ही फल आएगा, वहां चीकू नहीं आ सकता है। वैसे मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं, उसको दूसरे योनि में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का भाव ये था कि सजा के लिए, लेकिन ये सभी रिपोर्ट में आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि मेरा जन्म जानवर का हुआ है। तो ये प्रूफ है हमारे सामने कि मनुष्य योनि में ही आता है। पर यहाँ पे कहने की बात है कि हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स हमारे अंदर रहते हैं, उसको हम ओपन करते हैं तो हमारी मेमोरी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सके।
बहुत सुंदर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हमने की और बहुत कुछ अच्छा उसमें से हमको जानकारी भी मिली है। आगे हम इसको जरूर लेंगे, लेकिन आज हम जाने के पहले मेडिटेशन एक लेना चाहेंगे।
बिल्कुल अलर्ट होके बैठेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपने पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ेंगे और पूरा ध्यान हमारे शब्दों की ओर देंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर शांत है और आत्मा भी शांत अवस्था में है। मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा, वो भी एक दिव्य ज्योति है, ज्ञान के सागर है, उनसे ज्ञान का दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है और मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। जैसे ये दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, मुझ आत्मा के अंदर जितने भी पुराने फाइल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो हल्के होते जा रहे हैं। मेरे अंदर जितने भी इमोशनल भावनिक स्मृतियां हैं जो मुझे परेशान कर रही थी, वो रिलीज हो रही है और मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मुझ आत्मा के ऊपर जो भी पट चढ़ी हुई थी, जो भी मैल चढ़ी हुई थी, वो भी साफ हो रही है। पतित पावन परमात्मा की ये दिव्य शक्तियां मुझे स्वच्छ और पवित्र बना रहे हैं और ये प्रकाश मेरे द्वारा मेरे संपूर्ण मस्तिष्क में भी फैल रहा है। और जैसे ये दिव्य प्रकाश मेरे मस्तिष्क में फैल रहा है, मेरे मस्तिष्क के अंदर जितनी भी पेशियां है वो शक्तिशाली बन रही है और जिस मस्तिष्क के हिस्से में असंतुलन है वो संतुलित मात्रा में बैलेंस स्टेज में आ रहा है। मेरा ब्रेन शक्तिशाली बनते जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर और मन बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरी स्मृति का विकास हो रहा है, मेरा खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि मैं जो चाहूं वो ध्यान में रख सकता हूं। मेरी मेमोरी इम्प्रूव होती जा रही है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, प्रसन्न हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते।
ओम शांति।
आज हमने देखा कि मेडिटेशन से किस तरह से अनेक फायदे हैं, ब्रेन का थिकनेस बढ़ना या उसका डिजनरेशन होने का जो स्पीड है उसको कम करना, ऐसे बहुत सारे फायदे हमने जाने। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमको डॉक्टर सचिन ने दी। इसके साथ साथ बच्चों की जो चिंता हमेशा माता पिता को रहती है, वो बच्चों को भी बचपन से ही मेडिटेशन का हैबिट डाले, लेकिन उसके साथ माता पिता को करना जरूरी है। तो ये सब बातों के बारे में आप विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आगे की कड़ी में फिर से मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।